दिन भर तारीख 30 दिसंबर दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ईरान सरकार की चेतावनी, विरोध प्रदर्शनों में लोग न लें हिस्सा, लेकिन तीसरे दिन भी जारी है प्रदर्शन, सरकार समर्थक भी सड़क पर उतरे। नाराजगी की खबरों के बीच गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल को हार्दिक पटेल का ऑफर,
तो हमें सामने से कांग्रेस पार्टी ने बात कर सो के नितिन भाई ने आप शामिल करो ने हमें साचू पद आपो।
और वर्षांत कार्यक्रम में आज मुलाकात कराएंगे बीबीसी के उन हुनरमंद साथियों से जो गाते गुनगुनाते सजा देते हैं महफिल।
जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। ईरानी प्रशासन ने अपने नागरिकों को देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने को लेकर चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार और दाम बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के आंतरिक मंत्री ने ईरान के लोगों से कहा है कि वो अवैध रूप से इकट्ठे होने से बचें। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनों में बढ़ोतरी हो सकती है। छोटे छोटे समूहों में तेहरान विश्वविद्यालय के करीब प्रदर्शनकारियों के इकट्ठे होने के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। वहीं देश के दूसरे स्थानों पर सरकार के समर्थन में रैलियां भी हुई हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के दफ्तर ने बताया है कि दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स में शामिल होना चाह रहे 192 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को भारत ने वीज़ा जारी नहीं किया है। बयान में कहा गया है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक दरगाहों के संबंध में हुए 1974 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कायरो की अदालत ने पद से हटाए गए मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को न्यायपालिका की अवमानना करने पर 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। मिस्र में 2011 में हुई क्रांति के बाद मोरसी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए थे, लेकिन उनकी इस्लामी नीतियों के खिलाफ जनता के प्रदर्शन के बाद सेना ने उन्हें हटा दिया था। हालांकि वो अभी भी प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए उकसाने के मामले में 21 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। मोहम्मद मुर्सी ईसा अल हयात, अहमद इब्राहिम अबू बराका, मोहम्मद महसूब अब्दुल मेगुई दरवेश को कठोर परिश्रम के साथ 3 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। इसके लिए आपराधिक फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। ये थे जज हमादा शुक्री के शब्द। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सेई नवेलनी द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने नवेलनी पर मार्च में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जज ने कहा कि फरवरी में गठबंधन के मामले में नवेलनी को दोषी ठहराए जाने के बाद वो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा देने के लिए योग्य नहीं है। वहीं नवेलनी ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया ताकि वो राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ चुनाव न लड़ सकें। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि कैटलोनिया के पूर्व नेता कार्लस पुज्देमोंट विदेश से क्षेत्र में नई सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुज्देमोंट इस समय बेल्जियम में आत्मनिर्वासन में हैं। कैटलोनिया की स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद स्पेन में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखॉय ने कहा, विदेश में रहकर क्षेत्र का राष्ट्रपति बनकर दिखाना बेहद बेतुका है, और इससे भी बेतुका है विदेश से ऐसा दिखाना कि वो सारे काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, ये ऐसा है जैसे मैं लिस्बन से देश चला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है और ये कोई वैध या राजनीतिक समस्या नहीं रहेगी, ये सामान्य ज्ञान का मामला है। ये थे स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय के शब्द। नेपाल ने कहा है कि उसने दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से माउंट एवरेस्ट समेत पर्वतों पर एकल पर्वतारोहण करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यटन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पर्वतारोहण को सुरक्षित करने और मौतों को कम करने के लिए कानून में तब्दीली की गई है। प्रसिद्ध स्विस पर्वतारोही यूली स्टेक की इस साल अप्रैल में एवरेस्ट के करीब अकेले पर्वतारोहण करने पर मौत हो गई थी। प्रशासन को उम्मीद है कि नए नियमों के कारण नेपाली पर्वतीय गाइडों के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी। जर्मनी की रूढ़िवादी पार्टी ने कहा है कि शरण चाहने वाले बच्चों की आयु पर संदेह होने पर अनिवार्य परीक्षण अवश्य होने चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। श्रोताओं, आज शनिवार है, आपको इंतजार होता है इंडिया बोल का। बीबीसी वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला की वजह से आज इंडिया बोल के तहत चर्चा नहीं होगी, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बीबीसी के उन हुनरमंद साथियों से जो अपनी गायकी से जमा देते हैं रंग। इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ईरान में बीते गुरुवार से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो इन प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लें। हालांकि इसके बाद भी लोग विरोध कर रहे हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट दिनेश उप्रेती से।
ईरान में सरकार के खिलाफ बने माहौल के बीच आज सरकार समर्थक सड़कों पर उतरे। इन रैलियों का मकसद जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता दिखाना था। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक इन रैलियों में हजारों की संख्या में लोग शरीक हुए। इस बीच गृह मंत्री अब्दुल रहमान रहमानी फाजली ने लोगों को आगाह किया है कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा न लें, इससे उन्हें और दूसरे नागरिकों को परेशानी हो सकती है। ईरान में गुरुवार से सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत मशहद शहर से हुई। शुक्रवार को विरोध का सिलसिला आधा दर्जन शहरों तक फैल गया। शुरुआत में लोग बड़ी कीमतों और आर्थिक स्थिति को लेकर नाराजगी जता रहे थे। उसके बाद राष्ट्रपति हसन रूहानी और सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खामनेई के विरोध में भी नारेबाजी शुरू हो गई। लोग मौलवी शासन की विदाई की भी मांग कर रहे हैं। कई जगह प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारी दूसरे देशों में ईरान के हस्तक्षेप को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। वो नारे लगा रहे थे कि न गजा न लेबनान, ईरान के लिए है हमारा जीवन। ईरान सरकार विरोध प्रदर्शनों के पीछे सरकार विरोधियों और विदेशी ताकतों का हाथ बता रही है। उधर अमेरिका ने ईरान से कहा है कि उसकी प्रतिक्रिया पर पूरी दुनिया की नजर है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। अगली खबर भारत के राज्य गुजरात से। गुजरात में नई विधानसभा का गठन हो गया है। नई सरकार ने शपथ भी ले ली है, लेकिन राजनीतिक जमीन अभी तक स्थिर नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की नाराजगी की खबरों के बीच पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने उन्हें अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वो भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। सुनिए नवीन नेगी की रिपोर्ट।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की नाराजगी की खबरें विपक्ष के लिए बीजेपी पर वार करने का मौका बन गई हैं। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने नितिन पटेल को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया है।
बिल्कुल चर्चा करीशु, जो नितिन भाई तैयार हो कि हमारे भाजप छोड़वी छे, जो ये
अगर नितिन भाई बीजेपी छोड़ने को तैयार है और उनके साथ 10 विधायक है जो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे। अगर वो सही मायने में गुजरात में सुशासन चाहते हैं, तो हम कांग्रेस से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप नितिन भाई को शामिल करें और उनको उचित पद दिलाने की बात कहेंगे। ये थे हार्दिक पटेल के शब्द। गुजरात में नई सरकार के गठन के बाद पटेल का उप मुख्यमंत्री पद बरकरार है, लेकिन चुनाव के पहले उनके पास रहे कई अहम मंत्रालय इस बार उन्हें नहीं दिए गए हैं। हार्दिक के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है कि मंत्रालय बांटना बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पूरे मामले पर उसकी नजर बरकरार है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी को सुनिए।
भाजपा की नीति रही है अपने वरिष्ठों को अपमानजनक स्थिति में डालने का, वरिष्ठ लोगों को पहले सत्ता के लिए उपयोग करना, सत्ता आने के बाद इसको साइडलाइन करना, चाहे केशुभाई पटेल को हो, चाहे डॉक्टर ए के पटेल के हो, चाहे आनंदीबेन पटेल हो, चाहे वल्लभ कथीरिया हो, चाहे शिवलाल वेकरिया हो, के चाहे नितिन भाई पटेल हो, पाटीदारों की ताकत से सत्ता पाने के बाद भाजपा इतनी अहंकार में डूब जाती है कि वो पाटीदार को ही ज्यादा से ज्यादा अपमानित करती है।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी की मीडिया सेल के नेताओं ने इस बारे में किए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। लेकिन क्या वाकई नितिन पटेल नाराज हैं? और अगर ऐसा है तो उनकी नाराजगी क्या मायने रखती है? मैंने अहमदाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल से यही सवाल किया।
नितिन पटेल नाराज है ये बात सही है। जब से विभाग सौंपे गए हैं तब से लेके आज तक यानी आज तीसरा दिन है नितिन पटेल अपनी ऑफिस में नहीं आए। फिलहाल कुछ घंटे पहले ही नितिन ने अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना ये है कि विभागों को लेके मेरी नाराजगी नहीं है लेकिन मेरे आत्मसम्मान को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस मामले में मैंने हाईकमांड से बात की है और उनकी नाराजगी मायने इसलिए रखती है क्योंकि वो पाटीदार कम्युनिटी से है और सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात जैसे इलाकों में भाजपा ने पाटीदारों की वोट खोई है। इस हालत में नितिन पटेल का नाराज होना भाजपा के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है।
तो क्या अभी भी स्थितियां भाजपा के नियंत्रण में नहीं है?
दो चीजें बहुत कमजोर है भाजपा के लिए। पहली तो कि नरेंद्र मोदी की हाजिरी गुजरात में नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी की हाजिरी थी तो पार्टी पे उनका कंट्रोल था।
ये थे प्रशांत दयाल और अब वर्षांत कार्यक्रम की आज की कड़ी। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बीबीसी के उन साथियों से जिनमें से कुछ की रिपोर्ट आपने सुनी या पढ़ी होगी। इनमें से कुछ साथी ऐसे भी हैं जो खबरों की दुनिया से इतर दूसरी जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन इनके पास ऐसी खूबी है जो सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देती है। वो है गायकी का हुनर। इनसे मुलाकात करा रहे हैं बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा।
हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। आय हाय हाय हाय, क्या बात है जनाब, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया ये शेर सुन के। मेरा नाम है विदित मेहरा और ये शेर किसी ने अपने यार की याद में लिखा होगा या फिर कोई मौसम को याद कर रहा होगा, फजाओं को याद कर रहा होगा, पर आज का जो मौका है ना उस पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब नया साल आ रहा है और पुराना कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें, कुछ मोहब्बत तो कुछ शिकवे देकर जा रहा है और आ रहा है एक नया साल लेकर 365 दिन अधूरी रह गई ख्वाहिश को पूरा करने की उम्मीद लेकर, जिंदगी में कुछ हासिल करने की एक सकारात्मक सोच लेकर आ रहा है साल 2018। बीबीसी हिंदी पर हमने आपको बीते हफ्ते उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बारे में बताया, भारतीय बैडमिंटन सितारों के बारे में बताया, छोटे शहरों से आए चुनिंदा कलाकारों के बारे में भी बताया, पर आज हम आपको बताएंगे नहीं, सुनाएंगे, थोड़ा सा माहौल को रुमानी करें। बीबीसी के दफ्तर में कई लोग काम करते हैं और उन्हीं कई लोगों में से कुछ लोगों की आवाज इतनी गजब है कि जब भी कभी दफ्तर में कोई पार्टी होती है या कभी भी खाली टाइम होता है तो जनाब ये महफिल सजा देते हैं लोग। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं नए साल की शुरुआत गाते गुनगुनाते की जाए और जाते हुए साल को एक प्यारा सा अलविदा कहा जाए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ आ गए हैं अमरजीत साहब जो कि बीबीसी के दफ्तर में काम करते हैं। अमरजीत साहब कैसे हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ विदित जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
मैं बहुत बढ़िया और मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं को आप अपने बारे में बताएं।
जी मेरा नाम अमरजीत है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं 12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 3 महीने मुझे बीबीसी में ज्वाइन किए हुए हो गए हैं और यहाँ पर मैं चाय पिलाता हूँ सभी लोगों को। मेरा काम पेंट्री का है और वैसे भी मेरा काम सबसे अलग है, मैं चाय के साथ साथ सब लोगों को गाने भी सुनाता हूँ और मेरा ये शौक है और मेरी आदत है और मेरा जो करियर इसी में है।
और एक दफे इनके साथ बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ था, 200 रुपए का कुछ
जी
किस्सा
जी
था
जी एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे यहाँ साउथ दिल्ली में एक बार ऑडिशन चल रहे थे तो वहाँ पर मैं NDM कॉलेज में ऑडिशन के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड पास कर लिया था। सेकंड राउंड में मैं गाजियाबाद ऑडिशन देने गया था तो वहाँ मुझे पता नहीं चला था कि कुछ फीस का कुछ प्रॉब्लम था तो उसका फॉर्म चार्ज भरना था, सिर्फ 200 रुपये फॉर्म चार्ज भरना था और मैं घर से 200 रुपये लेकर चला था। वहाँ पर मैंने जाके पता किया तो सर उन्होंने मेरे से 200 रुपये मांगे, मेरे पास 200 रुपये थे नहीं, 100 रुपये मैंने खाने में खर्च कर दिए, 100 रुपये मेरे किराए में खर्च हो गए। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से वापस मायूस होकर लौटना पड़ा।
कोई बात नहीं, किसी ने सच ही कहा है कि मन का हो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा।
जी बिल्कुल।
तो अमरजीत साहब कौन सा गाना आज आप हमारे श्रोताओं के लिए आप गाना चाहते हैं नए साल के मौके पर?
स्पेशली अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं उन्हीं के ज्यादातर गाने गाया करता हूँ और जब से मैं दिल्ली में आया हूँ मैंने उन्हीं को सुना है सबसे ज्यादा, तो मैं आपको उनका गाना सुना सकता हूँ?
जी जी बिल्कुल स्टार्ट। जी
पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं,
तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं क नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है,
जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है।
तो ये गाना अमरजीत साहब ने गाया हमारे लिए। अमरजीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आए, और नया साल आपको मुबारक हो, और आपको इंशाल्लाह बहुत सारे गाने के ऑफर आए, हम तो यही दुआ करते हैं आपके लिए। थैंक यू अमरजीत साहब, थैंक यू। तो अमरजीत साहब के जाने के बाद स्टूडियो में आ गई है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हमारे सामने, और इन्होंने हाल ही में इस साल FM में ज्वाइन किया है BBC हिंदी में, और इनका नाम है सूर्यांशी पांडे। और कई सारे वीडियोस आपने इनके देखे होंगे, मीराबाई चानू के देखे, उनके बाद जो रेसलर आए थे जिंदर महल उनका नाम था, उनके साथ भी इन्होंने इंटरव्यू किया और वो फेसबुक पर काफ़ी अच्छा चला। तो सूर्यांशी कैसी हैं आप?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया है तो मैं भी दे दूँ कि हैंडसम बंदा मेरे सामने बैठा है और वो है विदित।
थैंक यू सो मच। और साल कैसा गया सूर्यांशी आपका? मतलब ये आपका पहला साल था यहाँ पे, आपको 4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा BBC हिंदी में?
अगर मैं कहूँ तो मेरा डेब्यू जो है ना वो BBC में बहुत ही अच्छा हुआ, बिकॉज एक होता है ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मैंने की जो आउट ऑफ द जोन जाके, कम्फर्ट जोन जाके मैंने किया, प्लस सरप्लस अपॉर्चुनिटी BBC देता है लिसनर्स से जुड़ने का, लोगों से जुड़ने का।
अब लोगों से जुड़ने की एक और कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ सूर्यांशी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, और जब भी हम बोर होते हैं तो सूर्यांशी अपने हेडफोन लगा के बस तेज तेज गाना शुरू कर देती हैं, और सारे लोग बोलते हैं अरे ये बस गाना गाती रहती है, वाकई बहुत अच्छी आवाज है। तो सूर्यांशी किस तरह से स्वागत करेंगी आप नए साल का, और कौन से गाने के साथ?
मुझे लगता है कि कश्मीर की खूबसूरती इतनी सुंदर है ना कि उसी से स्वागत करना चाहिए नए साल का। तो मिशन कश्मीर का एक गाना है, सोचो कि झीलों का शहर हो।
क्या बात है,
तो मैं वो गाना चाहूंगी। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखे सपने प्यारे, सच हो सारे बस और क्या।
सोचो कि झीलों का शहर हो,
क्या बात है, इस गाने से तो कश्मीर की याद आ गई सूर्यांशी।
बिल्कुल,
थैंक यू सो मच कि आप आई, और आपका नया साल अच्छा जाए, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर। हम जो देखे सपने प्यारे, सच हो सारे बस और क्या। तो सूर्यांशी चली गई जिन्होंने इस साल BBC हिंदी को ज्वाइन किया। BBC में 4 नई भाषा भी इस साल जुड़ी, जिसमें BBC पंजाबी एक है, और कई सारे गबरू मुंडे और सोनी सोनी कुड़ियां भी आई हैं, और एक गबरू मुंडे BBC पंजाबी के मेरे सामने बैठे हैं, सुनील कटारिया साहब। कैसे हो महाराज?
ਬਿਲਕੁਲ ਘੈਂਟ ਜਨਾਬ, ਕੈਮੋ ਕੈਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪੇਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਤੇ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ, ਨੋਇਡਾ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਯੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ?
ਔਰ ਨਿਆ ਸਾਲ ਆਪਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹੀ ਮਨੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੀ ਮਨੇਗਾ।
ਤੋ ਜਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਨਿਆ ਸਾਲ ਕੀ ਜਬ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਯਾ ਫਿਰ ਘਰ ਮੇਂ ਮਹਿਫਿਲੇ ਜਮੀ ਹੋਗੀ, ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਵੋ ਇੱਕ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ, ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ।
ਬਿਲਕੁਲ,
ਤੋ ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਜਰਲੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ?
ਯਾਰ ਜਬ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੀ ਬਾਤ ਆਤੀ ਨਾ ਤੋ ਗੀਤ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਗਾਨੋ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਜੀ
ਛੱਲਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਆ, ਵੋ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੇ ਦਾਦਾ ਹੋਂ, ਪੜਦਾਦਾ ਹੋਂ ਯਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਂ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਂ।
ਮੈਂ ਯੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਲੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ।
ਛੱਲਾ ਗੀਤ ਥਾ ਨਾ ਯੇ ਕੈਸੇ ਬਣਾ, ਯੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਨਿਕਲਾ। ਹੁਆ ਕਿਆ ਕਿ ਬੇੜੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਜੋ ਬੋਟ ਹੋਤੀ ਹੈ
ਜੀ,
ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਜਬ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਲੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਯਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਤਲੁਜ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੋ ਬਿਮਾਰ ਪੜ ਗਏ, ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਤੂੰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੋ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਤੋ ਚਲਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੇਂ ਉਸਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲਾਈਨੇ ਲਿਖੀ ਜੋ ਥੀ ਕਿ ਛੱਲਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ, ਬੇੜੀ ਮੀਨਸ ਵਹੀ ਬੇੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੇ ਵਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬ ਮਾਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਵਤਨ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਤੋ ਵੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇਂ ਵੋ ਵਿਲਾਪ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਵੋ ਗੀਤ ਗਾਤਾ ਹੈ।
ਤੋ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਛੱਲੇ ਪੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ।
ਓ ਛੱਲਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੂਰੇ, ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ, ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਟੋਲਾ ਵੇ ਕਦਾ ਲਾਇਆ ਚੋਰਾ। ਛੱਲਾ ਬੇੜੀ ਵਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੂਰੇ, ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ, ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਛੋਰਾ, ਵੇ ਕਾਦਾ ਲਾਇਆ ਚੋਰਾ।
ਤੋ ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਲਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਛੱਲਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਅਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਔਰ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਉਨਕੇ ਜਾਤੇ ਹੀ BBC ਮਰਾਠੀ ਸਰਵਿਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤੇਜਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ। ਤੇਜਾਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈਂ ਆਪ?
ਇਕਦਮ ਮਸਤ।
ਇਕਦਮ ਮਸਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਬਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਦਮ ਮਸਤ।
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਸੇ ਹੋ, ਪੂਨੇ ਮੇਂ ਤੋ ਯੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ
ਜੀ,
ਔਰ ਯੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮਸਤ ਹੈ, ਤੋ ਆਈ ਐਮ ਮਸਤ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਏ ਔਰ ਜੁੜੀ ਹੈ BBC ਮੇਂ, BBC ਮਰਾਠੀ, BBC ਪੰਜਾਬੀ, BBC ਤੇਲਗੂ ਔਰ BBC ਗੁਜਰਾਤੀ। ਤੋ BBC ਮਰਾਠੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇਜਾਲੀ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਆਪਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ?
ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ, ਐਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ,
ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ। ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇਜਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾ?
ਦਿੱਲੀ ਕਾ, ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਸੇ ਹੂੰ, ਤੋ ਪੂਨੇ ਤੋ ਇਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਪੇ ਰਿਲਾਏ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਅਬ ਨਯਾ ਸਾਲ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ?
ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਤੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗੋ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਬਨਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲਵਾਲੋ ਕੀ ਹੈ
ਜੀ,
ਤੋ ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ ਵੋ ਆਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਏ ਸਾਲ ਪੇ ਕਿਆ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਆਪਕੇ, ਬਤਾਏਂ, ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਬੁਲਾਏਂਗੀ ਘਰ ਪੇ, ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਆ ਹੋਗਾ?
ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਅਭੀ ਸਿਸਟਰ ਘਰ ਪੇ ਆਈ ਹੈ
ਜੀ,
ਤੋ ਮੇ ਬੀ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਕਲ ਪੜੇਂਗੇ, ਯਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤੋ ਫਿਰ ਘਰ ਪੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੇਂਗੇ, ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਵਿਲ ਪਲੇ ਸਮ ਸੌਂਗਸ, ਡਾਂਸ ਟੂ ਇਟ।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਣੇ ਤੋ ਆਪ ਚਲਾਏਂਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਗਾਣੇ ਗਾਤੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪ?
ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਨਗੁਨਾਤੀ ਹੂੰ।
ਕੌਨ ਸਾ ਗਾਣਾ ਗੁਨਗੁਨਾਤੀ ਹੈ?
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਕਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਸੌਂਗ ਇਨ ਮਰਾਠੀ। ਇਹ ਸੌਂਗ ਹੈ ਖੁਲਲੇ ਰੇਕ ਸ਼ਰਣ ਮਾਜ਼ੇ, ਔਰ ਇਸਕਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਲ ਅਬ ਖਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਆਈਲ ਜਸਟ ਸਿੰਗ ਇਟ ਫੋਰ ਯੂ।
ਬਿਲਕੁਲ।
ਖੁਲਲੇ ਰੇ ਕ੍ਸ਼ਣ ਮਾਜ਼ੇ, ਖੁਲਲੇ ਰੇ, ਖੁਲਲੇ ਰੇ ਕ੍ਸ਼ਣ ਮਾਜ਼ੇ, ਖੁਲਲੇ ਰੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਹੋ ਸ਼ਕੁਨਾ ਚਾ, ਸ਼ਕੁਨਾ ਚਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ
सजले रे क्षण माझे सजले रे
झुलुक वाऱ्याची आली रे लेऊन कोळी सुन कुणी साजन स्पर्शाची जाणी बहून भाळले मन कुळे या वेळाचे नाच रे भाव बिलो
मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा और हैपनिंग न्यू ईयर हो ही नहीं सकता। मतलब आपने हिंदी के गाने सुन लिए, हमने पंजाबी के गाने सुन लिए और छल्ले का मतलब भी समझा और मराठी गाना भी सुना और बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया तेजाली जी एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको।
यस, और आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ वेरी प्रॉस्परस ईयर अहेड।
तो भाई पंजाब के हमने सरसों के खेत देख लिए, समंदर का किनारा देख लिया, अब इन सब के बीच पहाड़ों को कैसे छोड़ा जाए, है ना? पहाड़ों से तो भैया आवाजें आती हैं, आवाजें गूंजती हैं मोहब्बत की और बुलाने की, और इसी पहाड़ को लेकर हमारे साथ, पहाड़ तो लेकर नहीं पर पहाड़ से आए हैं सीधा हमारे स्टूडियो में, बीबीसी में काम करते हैं हमारे सहयोगी राठौड़ साहब, आदर्श राठौड़ साहब। राठौड़ साहब कैसे हैं आप?
जी बहुत बढ़िया।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि राठौड़ साहब गाना गाते हैं, गाना लिखते भी हैं और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। मतलब मैं हैरान रह गया था, भाई साहब आपको तो सब टेक्नोलॉजी पता है, ये कब हुआ राठौड़ साहब?
ये वो दौर था जब एक तो मैं बहुत होमसिक रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से यहाँ आया तो उसके बाद मन करता था कि घर चला जाऊँ, तो 2011 में मैंने सोचा कि सब छोड़ के अब हिमाचल चलते हैं और वहीं पे कुछ किया जाए। फिर वहाँ बैठा तो इत्मीनान से थोड़ी फुर्सत मिली तो मैं जो कविताएं लिखता था, गाने लिखता था, तो थोड़ा बैठ के उनको गाना शुरू किया, थोड़ा म्यूज़िक देना शुरू किया और फिर धीरे धीरे कुछ गाने बने, फिर उसके बाद लेकिन फिर से दिल्ली आ गया और उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा छूट गया।
अच्छा, और ये मतलब सिलसिला छूटा पर अब पकड़ने का आपका प्लान है कि या काम ही करते रहेंगे?
काम के साथ साथ जब थोड़ा वक्त मिलता है तो ज़रूर, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है तो एक चीज़ चाहिए आपको जो आपको एकदम रिफ्रेश कर दे, तो म्यूज़िक का साथ मतलब बना हुआ है।
ठीक है, तो म्यूज़िक का साथ बना भी रहेगा हमारे श्रोताओं के साथ भी, तो आज अपने पिटारे से आप कौन सा गाना हमारे लिए सुना रहे हैं?
ये वो गाना है जिसमें मैंने इस तरह से लिखा था कि पहले जो मेरा गांव है वो शहर में रहने वाले आदमी को आवाज़ देता है कि तू सब कुछ भूल गया है, यहाँ की साफ हवा है, अपने रिश्तेदारों को भूल गया है, अपने घर को भूल गया है जहाँ पे तुम पले बड़े हो, लेकिन जो शहर वाला आदमी है वो बोलता है मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं रोज़गार के सिलसिले में यहाँ हूँ, लेकिन मैं आना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, शहर मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो इस पे कुछ कविता लिखी थी जो कि बाद में मैंने एक अंग्रेजी गाना है उसकी धुन के हिसाब से वो फिट बैठी तो उसी के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया।
तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए।
जी। कितनी मैं हक्का पाई आई जाके हूं घर आ जाओ, आई जाओ मेरे आ प्यारे आ, छड़ी दे तू शहर आ जो, नाते तैं दित्ते भुलाई, भुलिया तू अपना गरां, खड्डारी छेड़ तू भुलिया, चिल्लारे डाड़ारी छां।
क्या बात है राठौड़ साहब, मतलब आपने तो समा बांध दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला और हमसे बात की, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।
और सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत आपको नया साल मुबारक हो, आप समंदर की तरह शांत रहें इस नए साल में, पहाड़ों की तरह अडिग रहें और पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरह आपकी सोच हो, यही हम दुआ करते हैं। बीबीसी हिंदी की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।
विदित मेहरा और साथियों की इस खास प्रस्तुति पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। ईरानी प्रशासन ने अपने नागरिकों को देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने को लेकर चेतावनी दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के दफ्तर ने बताया है कि दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स में शामिल होना चाह रहे 192 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को भारत ने वीजा जारी नहीं किया है। कायरो की अदालत ने पद से हटाए गए मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को न्यायपालिका की अवमानना करने पर 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सेई नवेलनी द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे शाकिर आलम, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया नवीन नेगी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।